मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 21 दिसंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं अर्जुन कुमार, आपका गांव है गिरा, जिला औरंगाबाद बिहार से, नरेंद्र कुमार पटेल, आप हैं रीवा मध्य प्रदेश से, और नितेश शर्मा, आपका गांव है अमली, जिला टोंक राजस्थान से। तो अर्जुन, नरेंद्र और नितेश, आप तीनों युवा साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों मैंने बताया कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को नियमित रूप से दिया करता हूं, तो कुछ सूचनाएं हैं और सूचनाएं ये हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स यानी कि अखबार की जो कटिंग्स हैं वो आपको हमेशा की तरह शनिवार को भी मिलेंगी। इसके साथ ही आपको योजना के 2 आर्टिकल मिलेंगे, उसमें एक हिंदी का होगा एक इंग्लिश का, और कुरुक्षेत्र के भी आपको 2 आर्टिकल्स मिलेंगे, उसमें एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का। मेन एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए आपको एक साप्ताहिक प्रश्न के रूप में एक प्रश्न उपलब्ध कराया जाता है जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से होते हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित होते हैं। यहां मैं एक बार आप सबसे फिर अर्ज करना चाहूंगा फ्रेंड्स, और वो ये कि जैसे ही आप साप्ताहिक प्रश्न पढ़ते हैं उसे लिखने की कोशिश मत कीजिए, वो रियल में फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि आप उस टॉपिक की तैयारी कीजिए, उस टॉपिक के बारे में पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे, और जब तक प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे तब तक फिर लिखने का क्या मतलब है, आप बताइए। ये तो वो आपकी केवल प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करना होगा जबकि उसकी जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो पहले आपको उस टॉपिक की बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए और इसके बाद फिर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। तो ये कुछ सूचनाएं थी दोस्तों। आज मुख्य विषय के रूप में मैं स्टार्टअप पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। आज एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कल के न्यूज में बकायदे थी, और वो था कि लोकसभा ने उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018 पारित कर दिया है। हालांकि देखिए अब ये लोकसभा से पारित हुआ है, अभी प्रक्रिया पूरी होनी है, लेकिन चूंकि ध्वनि मत से पारित किया गया है इस पर बहस भी हुई, तो ये मान करके चलिए कि यह कानून बन जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018, न्यूज में आपने बकायदे सुना कि पहला ऐसा विधेयक 1986 में पारित किया गया था, 1986 में। तो आप समझ लीजिए कि ये विधेयक कितना पुराना हो गया, ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 38-40 साल पुराना हो गया है, और जबकि 38-40 साल के दौर में आप देख रहे हैं कि चीजें कितनी ज्यादा बदल गई हैं। इसके बाद से ही तो लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ था और लिबरलाइजेशन से तो बहुत ज्यादा चीजों में परिवर्तन आया है। हमारे यहां मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, विदेश का सामान आ गया, तो उनके अपने नॉर्म्स बड़े स्ट्रांग हैं, तो उन सबको देखते हुए बहुत जरूरी था कि उपभोक्ता संरक्षण बिल पारित किया जाए, बदला जाए उसे। यूं कह लीजिए कि देर आए दुरुस्त आए, चलिए अब तो कम से कम यह विधेयक पारित हुआ। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं थोड़ी सी आपके सामने रखने जा रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती हैं और मेंस में भी इसकी संभावना बन सकती है। तो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, पहला तो यह है कि अगर आपने कोई चीज खरीदी और उस चीज से आपको चोट लग गई या आपको कोई नुकसान हो गया, तो आप बकायदे उस चीज को जो बनाने वाला था यानी कि जो मैन्युफैक्चर करने वाला था या जो बेचने वाला था उसके खिलाफ आप दावा कर सकते हैं, बकायदे दावा कर सकते हैं। और एक बड़ी बात इसमें जो कही गई है वो विज्ञापन देने वाली कंपनियों के बारे में है कि अगर वो कोई भ्रमात्मक विज्ञापन देते हैं तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। पहली बार तो उनको 2 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा, फिर से उन्होंने दिया तो दूसरी बार में 5 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना होगा, ये सजा का प्रावधान किया गया। आप देख रहे हैं कि विज्ञापन कितने भ्रमात्मक आते हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले अखबारों में पढ़ा था, करीब 15 दिन हो गए होंगे, कि जो राजश्री पान मसाला है इसमें काफी मिलावट पाई गई है और काफी खतरनाक मिलावट पाई गई है, एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज स्टोरी थी। लेकिन आप देखिए कि राजश्री पान मसाला का बकायदे एडवर्टीजमेंट आता है, अब वो कितना वो न्यूज सही है गलत है नहीं मालूम, या यूं कह लीजिए कि चलिए जो दावा किए जाते हैं विज्ञापन में कि साहब हमारा विज्ञापन हमारी वस्तु ये चीज आपको देगी, आपको गोरा बना देगी और आपकी एनर्जी बढ़ा देगी और बाल को काले कर देगी, अगर उनमें वह गुण नहीं है तो यह भी भ्रमात्मक विज्ञापन होगा, तो उन पर भी रोक लगाने का प्रोविजन इसमें है। इसमें एक दो जो बातें और कही गई हैं जो कंज्यूमर के बहुत फेवर में है वो ये है कि पहले अगर आपने कहीं से सामान खरीदा है तो वहीं से जाकर के शिकायत करनी पड़ती थी, लेकिन अब डिजिटल के जमाने में आप अपने घर बैठे भी बकायदे उस वस्तु के खिलाफ शिकायत दायर कर सकते हैं। एक जो बड़ी बात है वो ये है कि अब केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा, बकायदे प्राधिकरण बनाया जाएगा, और ये प्राधिकरण फिर सुरक्षा संबंधी नोटिस जारी कर सकेगा, रिफंड का के ऑर्डर दे सकेगा और बकायदे भ्रामक जो विज्ञापन होंगे उनके खिलाफ भी कार्यवाही वो कर सकेगा। इसी के साथ ही साथ जो हमारा सूचना आयोग का जो सिस्टम है यहां भी उस तरीके का प्रावधान किया गया है, जिला स्तर पर उपभोक्ता जिला स्तर पर आयोग होंगे, इसके बाद राज्य स्तर पर आयोग होंगे, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर आयोग होंगे। ये बिल्कुल जैसे न्यायालय का पैटर्न है उसी पर है, जिला स्तर से आपको संतुष्टि नहीं मिली तो उसके खिलाफ आप राज्य स्तर पर अपील कर लीजिए, और राज्य स्तर पर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आप राष्ट्रीय स्तर पर अपील कीजिए, और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली तो यहां आप विशेष ध्यान रखिएगा कि फिर आप केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। प्री में आपको इस तरीके से उलझाया जा सकता है क्योंकि बहुत से आयोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो यहां आपको सुप्रीम कोर्ट में ही उसके खिलाफ जाना होगा। तो ये कुछ प्रावधान हैं जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे फ्रेंड्स, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब एक बात मेरे मन में 2 दिनों से आ रही है, उसे मैं शेयर करना चाहूंगा, हालांकि ये जनरल स्टडीज की बात नहीं है फिर भी मुझे बतानी चाहिए, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बात बहुत मायने रखेगी जो हीनता से ग्रसित होते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरा कद छोटा है, मेरा रंग सांवला है, मेरा चेहरा ठीक नहीं है और मैं सुंदर नहीं दिखता हूं, तो फिर मैं सिविल सर्वेंट कैसे बनूंगा। उनके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं फ्रेंड्स, और वो ये है आरती डोगरा। अभी राजस्थान में सरकार बदली, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री आ गए हैं अशोक गहलोत जी, और आने के बाद सामान्यतः होता है कि बदलाव किए जाते हैं प्रशासन में, तो उसमें आरती डोगरा का नाम आया था। आरती डोगरा देहरादून की लड़की रही, देहरादून की लड़की हैं, और 2006 में आईएएस बनी और फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनी, और इनको राजस्थान कैडर मिला। इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी खुले में जो शौच किया जाता है, जब वो अजमेर में कलेक्टर थी तो वहां उन्होंने एक अभियान चलाया था बंको बिकाड़ो, बंको बिकाड़ो, और इस अभियान को बहुत सफलता मिली। फिर राजस्थान के दूसरे जिलों में भी यह अभियान चलाया गया और बकायदे इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें आरती डोगरा ने क्या कमाल कर दिया, वास्तव में जो मैं बताना चाह रहा हूं मैंने वो अभी तक आपको नहीं बताया है और अब मैं बता रहा हूं मित्रों। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरती डोगरा की जो हाइट है वो मात्र 3.5 फीट है, 3.5 फीट हाइट, कल्पना करके देखिए। मैं जो हमारे दिमाग में एक व्यक्तित्व की एक इमेज बनी होती है ना, मैं उस इमेज को लेकर के बात कर रहा हूं। 3.5 फीट की अगर किसी लड़की की हाइट होगी तो आप उसकी मानसिकता का अनुमान लगाइए कि वो किस तरीके के मानसिक उहापोह से गुजरती होंगी, कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूंगी, मुझे कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन सिविल सर्विस सर्वेंट बनी, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया। नंबर मिले होंगे उनको बकायदे इंटरव्यू में भी, मैं ही तभी वो प्रॉपर आईएएस में आई। तो मित्रों, यहां मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि यूपीएससी की जो तैयारी है, यूपीएससी का जो एग्जाम है, वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज है। ये चीज कोई मायने नहीं रखती कि आप में कितने स्मार्टनेस है और कितने किस परिवार से है, नॉट एट ऑल। उसमें केवल आपका ज्ञान, आपकी मौलिकता, आपका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब है आंतरिक व्यक्तित्व, यही मायने रखता है। और जिन स्टूडेंट के मन में इस तरह के ऊहापोह हों, मुझे लगता है कि आरती डोगरा उनके इस ऊहापोह को खत्म करने का सबसे बड़ा माध्यम हो सकती हैं। इसीलिए खासकर मैंने आरती डोगरा जी के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दी है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं मुख्य विषय स्टार्टअप के बारे में बातें करता हूं। कल अगर आपने डीडी न्यूज सुनी हो तो आप देखेंगे, तो आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स के बारे में वहां उसमें बातचीत भी की गई थी, और उसका संदर्भ ये था कि स्टार्टअप्स में अभी एक रैंकिंग दी गई है, तो गुजरात इसमें पहले स्थान पर रहा, जिसको 100% मार्क्स मिले, तो गुजरात टॉप पर रहा, और इसके बाद फिर दूसरे राज्य आए। यानी कि स्टार्टअप्स को गति देने में सबसे जो पहला राज्य बना वो गुजरात बना, और इसके बाद फिर उस पर बकायदे डिस्कशन किया गया था, दो यंग लोगों को बुलाया गया था और उनसे स्टार्टअप्स के बारे में बात की गई थी। यहां मैं थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि स्टार्टअप्स की बहुत चर्चा होती है, इसलिए कि आपको मालूम हो कि स्टार्टअप्स है क्या। सामान्य तौर पर देखिए, जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो लगता है कि स्टार्ट करना यानी कि शुरू करना। तो क्या अगर मैं एक दुकान खोल शुरू कर दूं तो स्टार्टअप हो जाएगा? क्या मैं एक फैक्ट्री खोल दूं कि स्टार्टअप हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टअप्स जो कहा जा रहा है उसके थोड़े से अलग किस्म के मानक हैं, मापदंड हैं। पहली बात तो यह है कि यह जो कंपनी होगी, नो डाउट कि यंग कंपनी होगी, बिल्कुल नई कंपनी होगी, और यंग लोगों के द्वारा एस्टेब्लिश की गई कंपनी होती है, बिल्कुल यंग लड़के होते हैं। वो अकेला भी स्टार्ट कोई शुरू कर सकता है, या दो चार लोग मिलकर के भी शुरू कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, शायद समझने में आसान होगा, फ्लिपकार्ट आप सुनते हैं, जिससे आप किताबें वगैरह मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं, वो स्टार्टअप कंपनी है। शहर के स्टूडेंट जानते होंगे कि ओला कैब, आप ओला कैब मंगाते हैं, है ना, टैक्सी मंगाते हैं, वो स्टार्टअप माना जाता है उसको भी। आप जब होटल वगैरह में जाते हैं तो येहू कुछ इस तरह की कंपनी है, वो स्टार्टअप है। तो ये स्टार्टअप कहलाते हैं। बायजू के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो स्टार्टअप है। यानी कि यंग लोगों के द्वारा किया गया एक ऐसा उद्योग, इंटरप्रेन्योरशिप तो है लेकिन ये दुकान नहीं है, ये कोई फैक्ट्री भी नहीं है, एक ऐसा उद्योग जो एक तरीके से इनोवेशन लिए हुए है, जिसमें कुछ नयापन है, और ज्यादातर वो टेक्निक बेस्ड है। अब देखिए कि जो ओला है तो ऐसा नहीं कि उसके पास टैक्सियां हैं, ऐसा नहीं है, उसके पास टैक्सियां नहीं है, उसने अपना एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया, या यूं कह लीजिए कि एक ऐप जैसा बनाया, जिसके माध्यम से आप बकायदे टैक्सी बुक करा सकते हैं, जा सकते हैं, और उसकी पूरी सुरक्षा और दूसरा सारा प्रबंधन वो कंपनी कर रही है। तो ये इनके पास फंड या तो खुद के हो सकते हैं, या प्राइवेट जो सेक्टर के लोग हैं वो इनको फंड देते हैं, और बकायदे सरकार भी इन्हें टैक्सेस में छूट देती है ताकि ये आगे बढ़ सके। तो ये बकायदे मार्केट की स्टडी करते हैं, जरूरत को समझते हैं, और जरूरत समझने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं। ज्यादातर ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, लॉन्च करते हैं कि जो यूज करने वाले कंज्यूमर हैं उनको मदद मिल सके। और ये रिस्क ओरिएंटेड भी बहुत होता है, क्योंकि चीज बिल्कुल नए तरीके से शुरू की जाती है, इसीलिए इनके सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। सच पूछिए तो असफलता की ही गारंटी ज्यादा होती है। बहुत कम स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिन्हें सफलता मिली है। तो ये स्टार्टअप के बारे में मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दी है, और इसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इसकी चर्चा होती रहती है, तो आप थोड़े से और अच्छे तरीके से इसके बारे में जान लें। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आज उनकी संख्या कम ही है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इसमें एक मेरे पास मेल आया है मोहम्मद अब्दुल सलाम का, जो हमारे 9th बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने सूचित किया है कि CBT2 में के लिए इनका सिलेक्शन हो गया है। तो मोहम्मद अब्दुल सलाम, इसके लिए मैं आपको अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक अच्छे और सफल जीवन के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, नगमा मलिक सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, हर्षिता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, रेखा द्रविड़ फिरोजपुर पंजाब से और सोनी गंगवार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, शुक्रवार है, अब आप सबसे 2 दिनों के बाद मुलाकात हो सकेगी, तो इन 2 दिनों के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और साथ ही मेरा अभिवादन भी। नमस्कार।